अब आगे आपने देखा कि देवांश दिशा को अपनी बाहों में जकड़े हुए था। दिशा के चिल्लाने पर होश में आता है। दिशा रूही की आवाज़ सुनकर रूही की ओर भागती है। रुद्र रूही को गाड़ी में धक्का देकर बैठ जाता है और गाड़ी वहां से निकल जाती है। दिशा गाड़ी के पीछे भागती है। देवांश उसे रोकता है। दिशा देवांश को रूही को ले जाने का दोषी ठहराती है। देवांश दिशा को अपने भाई के बारे में बुरा बोलने से मना करता है और उसे जुबान संभालकर बोलने की चेतावनी देता है। दिशा देवांश से अपना हाथ छुड़ाती है और वहां से जाने लगती है। देवांश उसे रोकता है और रूही को ढूंढने में मदद करने की पेशकश करता है। दिशा सोच में पड़ जाती है और फिर देवांश की गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी तरफ सिंघानिया विला में परी रुद्र की शादी की शॉपिंग के लिए जाने की बात करती है, जिस पर सुमन उसे डांटती है। दादाजी परी को अपनी दादी को प्रीत कहने से मना करते हैं। रुद्र की कार में रूही डरी हुई बैठी है और रुद्र उसे देख रहा है। अब रुद्र रूही के हाथों में चूड़ियां देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे दर्द पहुंचाकर चूड़ियां निकाल देता है। रूही को शांत रहने की चेतावनी देता है और कहता है कि उन चूड़ियों को पहनाने का हक सिर्फ उसका है। रूही अनाथाश्रम जाने की बात करती है। परी दादी को गाउन देने की बात करती है, जिस पर दादाजी नाराज होते हैं और कहते हैं कि प्रीत को गाउन में देखने का हक सिर्फ उनका है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 22। फिर प्रीता की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोले, प्रीत तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है ना लोगों के सामने गाउन पहनने का, चलो मैं तुम्हारे सारे शौक निकालता हूँ। इतना बोल प्रीता का हाथ पकड़ उन्हें वहां से सबके सामने से ले जाते हैं। वहीं दादा दादी के जाने के बाद सुमन परी के सर पर मारते हुए बोली, कर दी ना अपनी दादी के लिए मुसीबत खड़ी, जब तुझे मालूम है कि तेरे दादा कैसे हैं तो तुझे ये सब उनके सामने बोलने की क्या जरूरत थी, अब पता नहीं वे तेरी दादी के साथ क्या करेंगे। परी जैसे ही अपनी मॉम की बात सुनकर कुछ बोलने को होती है, वैसे ही उसकी नज़र बाहर के आते अपने डैड पर पड़ती है, जिसे देख परी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वे मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी मॉम सुमन से कहती हैं, मॉम वे सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप गाउन पहन रही हैं ना, चलिए बताइए आपको वे वाली गाउन कैसी लगी थी जो मैंने आपको कल फ़ोन में दिखाई थी, जिसमें पूरी किरकिरी लगी हुई थी और उसकी बैक काफ़ी डिप थी, साथ ही साथ कंधे पर पतली सी सिर्फ पट्टी लगी हुई थी। वे ड्रेस काफ़ी खूबसूरत थी ना मॉम, आप उसे पहनकर कितनी खूबसूरत लगेंगी, क्या मैं वो ड्रेस आपके लिए ऑर्डर कर दूँ। सुमन जी परी की बातों को सुनकर उस ड्रेस को याद करने लगती हैं, उन्हें भी वे ड्रेस काफ़ी पसंद आई थी, इसलिए वे परी को देखते हुए कहती हैं, ठीक है तो वे ड्रेस मंगवा ले, मुझे भी वो ड्रेस अच्छी लगी थी। धीरज जिसने परी की सारी बातों को सुन लिया था, सुमन का इतना बोलना ही था कि वे उस ड्रेस को पहनना चाहती हैं, तभी उनके कानों में धीरज की सर्द आवाज़ पड़ती है, सुमन जी क्या कहा आपने, आप कौन सी ड्रेस पहनना चाहती हैं, आपको जिस भी तरह की ड्रेस पहननी है आप मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से उन ड्रेस को दिलाता हूँ, चलिए मेरे साथ कमरे में, मैं आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। इतना बोल वे सुमन जी का हाथ पकड़ कमरे की ओर ले जाने लगते हैं। वहीं धीरज को यहाँ देख और उनकी बातें सुन सुमन जी के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। तभी उसकी नज़र मुस्कुराते हुए परी पर पड़ती है, जिसे देख वे समझ जाती हैं कि परी ने ये सब जानबूझकर किया, जिसे देख उनका परी को खूब मारने का मन कर रहा था। वहीं धीरज जी चलते चलते रुक जाते हैं और फिर परी की तरफ देखते हुए बोले, परी बेटा आप मुझे उस गाउन की फ़ोटो भेज दीजिए, मैं आपकी मॉम को वे ड्रेस अच्छे से दिला दूंगा। अपनी डैड की बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए बोली, जी डैड मैं अभी भेजती हूँ। परी की बात सुनकर धीरज सुमन को लेकर कमरे में चले जाते हैं। वहीं परी अपनी डैड को गाउन की फ़ोटो को भेजते हुए मन ही मन हंसते हुए खुद से बोली, आज तो मेरी मॉम गई ही समझो। इतना बोल वे मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले जाती है। वहीं कामना सभी को जाता देख खुद से ही बोली, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इतना बोल वे नौकरों से अपने लिए कुछ खाने का सामान रूम में भिजवाने को बोल वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ देवांश की कार में दिशा, जो कब से देवांश की कार में बैठी इधर से उधर घूम रही थी, वे देवांश से थोड़ा गुस्से में बोली, सर आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो हमें कहीं भी आपके भाई की गाड़ी नहीं दिख रही है, पता नहीं वे रूही को लेकर कहाँ चले गए हैं और उसके साथ क्या कर रहे होंगे, आप क्यों गाड़ी कहीं भी लेकर जा रहे हैं, आप उनके फ़ोन करके क्यों नहीं पूछ लेते कि वे कहाँ हैं, वे आपके भाई हैं, आपके पूछने पर वे ज़रूर बता देंगे कि वे कहाँ हैं। दिशा का इतना बोलना ही था कि देवांश एकदम से गाड़ी रोक देता है और दिशा को देख अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, मिस दिशा मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरी असिस्टेंस हैं, वरना आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसकी मदद कभी भी नहीं करता। रही बात रुद्र भाई की, तो आपको क्या लगता है कि मैं उनसे फ़ोन करके पूछूंगा और वे मुझे आराम से बता देंगे कि वे कहाँ हैं, आप उन्हें नहीं जानती पर मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वैसे भी वे अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्हें जो करना होता है वे चीज़ वे करके ही रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम आपकी फ्रेंड की थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हैं। देवांश की बात सुनकर दिशा डरते हुए बोली, सर आपके कहने का मतलब क्या है,
आपके भाई रूही के साथ क्या करना चाहते हैं? आप प्लीज मुझे बताइए कि आपके कहने का क्या मतलब है? आपके भाई मेरी रूही से क्या चाहते हैं? कहीं वे उसे तकलीफ तो नहीं पहुंचाएंगे? दिशा की बात सुनकर देवांश दिशा को शांत कराते हुए बोला, मिस दिशा, आप शांत हो जाइए। जब तक आपकी फ्रेंड ऐसी कोई हरकत नहीं करती जिसके भाई को गुस्सा आए, तब तक भाई आपकी फ्रेंड को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने भाई को गुस्सा दिला दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देवांश की बात सुनकर दिशा गुस्से से बोली, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला वे रूही को सजा देने वाले होते कौन हैं? एक तो वे पता नहीं कहां से आ गए और फालतू का उस चूड़ी वाले लड़के को मारने लगे, बल्कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वे ये सब कर क्यों रहे हैं और वे रूही से चाहते क्या हैं। वैसे भी रूही उनके साथ खुद नहीं गई है, बल्कि वे रूही को जबरदस्ती ले गए हैं, तो वे रूही को कुछ भी कहने या सजा देने वाले होते कौन हैं? देवांश दिशा की बात सुनकर अपने मन में खुद से ही बोला,
माई गुड गर्ल, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि भाई तुम्हारी फ्रेंड से चाहते क्या हैं? मैं तो सभी समझ गया। जब भाई उस चूड़ी वाले लड़के को मारने के बाद तुम्हारी फ्रेंड को जबरदस्ती अपने साथ ले गए, तब मैंने भाई की आंखों में रूही के लिए एक अलग ही पागलपन देखा।